तो जब अपने असली आनंद स्वरूप आत्मा का पता चला तो अंदर से चाह मिट गई। आप थोड़ा प्रयोग करके देखें, ऐसी घड़ी लाए, ऐसा भाव बनाए कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहे, चाहे जो भी हो जाए, ये शरीर माता पिता का दिया हुआ है, मन वासनाओं का है अंतःकरण। अब इस अंतःकरण को चोट लगे, अपमान हो, शरीर का कुछ कट जाए, बिट जाए, मेरा क्या जाता है, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। जितना गहराई से आपका अनुभव होगा उतना आपके अंदर अथाह बल, अथाह सामर्थ्य, अथाह सुख छलकने लगेगा। ऑफिस में जाते हैं, अपना स्वार्थ नहीं होता, गांव का या पड़ोस के कल्याण के लिए आप बात करते हैं तो आपके चित्त की धड़कन एक प्रकार की होती है, और आपको उसमें मान चाहिए, पद चाहिए या कोई ऐहिक लाभ चाहिए तो आपके चित्त की दशा बहुत नीची होती है, आप गिड़गिड़ाने लगते हैं। और जिस समय आदमी के चित्त में चाह पैदा होती है उस समय आदमी लघु हो जाता है, छोटा हो जाता है, और जिस क्षण चाह नहीं उस क्षण अपने को ऊंचा महसूस करता है। ज्ञानी की चाह सदा के लिए निवृत्त हो गई, इसलिए ज्ञानी सर इज्जत वाले से ऊंची इज्जत ज्ञानी की होती है, हर संसार में ऊंचाई से भी ऊंचा ज्ञानी होता है। तो यहां अष्टावक्र मुनि कहते हैं, कर्ता समाधि है नहीं जिसमें नहीं विक्षेप है, उस तत्व में, उस शुद्ध स्वरूप में विक्षेप नहीं तो समाधि क्या करे। वो समाधि कर रहा है सो कर रहा है, भोजन कर रहा है सो कर रहा है, मैं भोजन करता हूं ऐसी भ्रांति ज्ञानी को नहीं होती, मैं समाधि कर रहा हूं ऐसी भ्रमणा ज्ञानी को नहीं होती। धातु कोई ने ध्यान हशे तो तेनु प्रारब्ध तेव हशे, मरतु कोई ने बलून हशे तो तेनु प्रारब्ध तेव हशे। ये बात बहुत सूक्ष्म है और बहुत बढ़िया बात। अब इस बढ़िया श्लोक भगवत गीता के, ये अष्टावक्र गीता के 18वें अध्याय का 28वां श्लोक, इस श्लोक का भाव समझकर हम अगर इसकी ऊंचाई का अनुभव करना चाहें तो महाराज हम संयोग जन्य सुख लेने की इच्छा को छोड़ दें। महाराज इच्छा छूटती नहीं, इच्छा छोड़ने का एक ही उपाय है, संयोग जन्य सुख लेने की इच्छा छोड़ो। सुख लेने की जब इच्छा हो तो वही सुख दूसरों को दो। बढ़िया मिठाई आ गई तो के औरों को कैसे मिले, सुंदर वस्त्र आ गए कि दूसरों को कैसे मिले। कोई ने आपका मान कर दिया, आदर कर दिया कि ये आदर दूसरों को कैसे मिल जाए, आप इनको दान कर दो। जो संयोग जन्य जो बाह्य सुख आते हैं वो अपने घर से ही शुरू करो, बेटे को, पत्नी को, परिवार को, फिर पड़ोस को, फिर गांव को, जितनी आपकी योग्यता बढ़ जाए। सुख लेने की इच्छा छोड़ दो, सुख देना शुरू कर दो। कि बाप जी तो पछे आपड़ा जीवन में शू रू, सुख जो हो बधाने आपी दे तो आपकी पाए तो दुख ज रू, ऐसा नहीं। ये गलती है हम लोगों की। आपको अगर जो सुख मिलता हो दूसरों को दोगे तो आपके पास दुख नहीं बचेगा। सुख देने वाला सुख का दाता होता है। आप खेत में जौ फेंको तो जौ, चावल फेंको तो चावल, और बाजरी फेंको तो बाजरी लौट के आती। ये कलयुग नहीं करयुग है, एक हाथ ले और एक हाथ दे, सुबह कर और शाम को ले। जय जय। ये मियां कलयुग नहीं करयुग है, राम तीर्थ सुनाते हैं भजन। यहां खूब सौदा नगद है, इस हाथ दे और इस हाथ ले। ये बुरा सोचो फिर देखो चित्त में क्या होता है। दूसरों के लिए भलाई सोचो, दूसरों को सुख देना कब विचार सोचो, दूसरों को ईश्वर देखना शुरू कर दो, लोग आपको ईश्वर देखने के लिए बाध्य हो जाएंगे। दूसरों को बेवकूफ देखना सोच लो, आप भी, आपको भी लोग बेवकूफ मानने लग जाएंगे। अगर विश्वास नहीं तो करके देख लो। अगर थोड़ी भी समझ है तो किसी की मृत्यु से आप अपनी इस देह की मृत्यु को याद कर लीजिए। किसी के धन क्षय से आपका भी कभी धन क्षय हो सकता है, किसी का जवानी क्षीण हो गई है तो आपकी भी जवानी क्षीण हो सकती है, होगी ही। किसी का बेटा जाता है, किसी का बाप जाता है, तो आपका भी कोई न कोई कभी न कभी जाने वाला ही है। जो कभी न जाए उस राम से अगर तुम्हारी मुलाकात हो जाए तो बेड़ा पार हो जाएगा। जो कभी तुम्हारा साथ न छोड़े उस अंतर्यामी राम के साथ तुम्हारा प्रेम हो जाए। अरे जरूरी नहीं कि प्रेम साधु कर सकता है, त्याग साधु ही कर सकता है, ये जरूरी नहीं है। त्याग तो गृहस्थी वेश में भी कर सकता है, साधना तो गृहस्थी भी कर सकता है। गृहस्थी वेश में भी कोई साधु हो सकता है, साधु वेश में भी कोई साधु हो सकता है, सम्राट के वेश में भी कोई साधु हो सकता है, भिखारी के वेश में भी कोई साधु हो सकता है। साधु कोई साधु वेश की ही प्रॉपर्टी नहीं है, त्याग कोई साधु का ही धन नहीं है। त्याग तो चाहे जो चाहे वो कर सकता है। देहाध्यास का त्याग करना ये सबके हाथ की बात है, और परमात्मा को प्रेम करना ये सबके हाथ की बात है। परमात्मा को व्यंजन देना गरीबों के हाथ की बात नहीं है। परमात्मा को ऊंचे ऊंचे पदों से श्लोकों से संतुष्ट करना ये अनपढ़ व्यक्तियों के हाथ की बात नहीं है। परमात्मा को दधि मिश्री मक्खन का भोग लगाना ये शायद सबके हाथ की बात नहीं है। लेकिन परमात्मा को अपने प्रेम को अपना प्रेम अर्पित करना, परमात्मा को स्नेह की निगाहों से निहारना ये सबके हाथ की बात है। वो कर सकते हो, आपके वश की बात है। परमात्मा को स्नेह करना कठिन भी नहीं है। संसारी को स्नेह करोगे तो उसकी इच्छाएं पूरी करते करते नाक में दम आ जाए, और परमात्मा को स्नेह करोगे तो परमात्मा को तो कोई इच्छा ही नहीं, परमात्मा को स्नेह करोगे तो परमात्मा तुम्हें परमात्मा रूप में जगा देगा। ज्ञानी की सेवा करना आसान है लेकिन उसको खुश करना कठिन है। परमात्मा की सेवा करना आसान है उसको खुश करना कठिन है। अज्ञानी को खुश करना आसान है लेकिन उसकी मांग पूर्ण करना कठिन है। अज्ञानी की सेवा करना कठिन है, खुश करना आसान है। उसको थोड़ा सा पोल्सन लगा दो, वाह भाई वाह, खुश हो जाएगा। भगवान को पोल्सन से खुश नहीं कर सकते, संत को पोल्सन से खुश नहीं कर सकते। संत और भगवान प्रेम से प्रसन्न होते हैं, और मूर्ख लोग पोल्सन से प्रसन्न होते हैं। पोल्सन माना समझते हैं ना, मक्खन से, मस्का से। ईश्वर को मस्का नहीं, कई लोग जाते हैं मंदिर में ईश्वर को मस्का लगाते हैं, हे भगवान तू दीन दयाल है, हे भगवान मैं कुछ नहीं, हे भगवान मेरा इतना कर दे, मैं तेरी शरण हूं, मैं नादान हूं, अनाथ हूं, हे अनाथों के नाथ प्रभु तू ये दे दे वो दे दे। बाहर आते कोई कह दे हे अनाथ हे दीन, तो देखो फिर उसकी क्या हालत करते हम लोग। तो हम ईश्वर के आगे पोल्सन लगाने गए थे, और फिर जब देखो तो मंदिरों में मस्जिदों में आश्रमों में भक्त तो गिने गिनाए मिलेंगे, बाकी के मिलेंगे भिखारी। मंदिर में भी जाएंगे तो ये दे दे ये दे दे, जो दिया है वो कम है क्या, जो दिया है उसका तूने उपयोग किया क्या, तेरे को इतना सुंदर मन दिया, सुंदर तन दिया, सुंदर आंखें दिखी दी, सब जगह उसकी महिमा और गरिमा को निहारने के लिए, सुंदर कान दिए साधु संतों के वचन सुनने के लिए, सुंदर जीवा दी हरिबोल करने के लिए, इसका तूने सदुपयोग किया नहीं, और तू कंकड़ पत्थर मांग रहा है कि ये दे दे। मेरी भी शादी हो जाए, दुआ करो सब मिलके, जिनकी हुई उनका क्या हाल हुआ है। ओम 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 ओम। मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, मुझे प्रेम का पाठ पढ़ा दे कोई, मुझे मंदिर मस्जिद जाना नहीं, मुझे संतों का प्याला पिला दे कोई। जहां ऊंच और नीच का भेद नहीं, जहां जात और पात की बात नहीं, न हो मंदिर मस्जिद चर्च जहां, न हो पूजा नमाज में फर्क वहां, बस प्रेम ही प्रेम की सृष्टि मिले, अब नाव को खेक चलो वहां, मुझे वेद पुराण कुरान से क्या, कोई मुल्ला कहे तो क्या, कोई पंडित कहे तो क्या, कोई धनवान कहे तो क्या, बड़ी बात हो गई। किसी ने निर्धन भी कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है, किसी ने बेवकूफ भी कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है, किसी ने विद्वान भी कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है। ईश्वर हमें अपना कह रहे, इस बात को हम मानते नहीं। ईश्वर बोलते ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, तू मेरा है। ईश्वर कह रहे तू मेरा, इस बात को हम मूल्य नहीं देते। और संसारी लोग जो मरने वाले वो बोलते मैं तेरा हूं, फिक्र मत करना, मैं बैठा हूं कह के गए सेठ जी। आधे घंटे में टेलीफोन आया कि हार्ट अटैक हो गया, ले जय श्री कृष्ण, हूं बैठो छू, चिंता करीस नहीं। तो मैंने प्रार्थना की थी कि हमारा तीन शरीर है, एक है शुद्ध निर्मल शरीर, वो और परमात्मा एक ही चीज है। दूसरा है उस इच्छाओं के कारण उसकी सत्ता लेके स्पंदित हुआ, उसको सूक्ष्म शरीर अंतवाहक शरीर कहते हैं। तीसरा है अंतवाहक सूक्ष्म शरीर, अंदर के शरीर की इच्छा पूर्ति का साधन, ये फिजिकल शरीर स्थूल शरीर। हमें घूमने की इच्छा हुई, पैरों का उपयोग हुआ, हमने चखने की इच्छा की, अंदर से अंदर वाले शरीर में चखने की वासना आई, जीवा काम में ली, बोलने की वासना आई, जीभ का उपयोग किया, लेने देने की वासना हुई, इन हाथों का उपयोग किया। ये उपयोग करने के लिए साधन प्रकृति के बने हैं। हकीकत में ये साधन जो है शरीर, ये हमको एक साधन मिला है, इसको हम लोग मैं मानने की गलती कर लेते और ऐसा कुंडाला पका हो गया, ऐसी रेखा खिंच गई कि इस रेखा से बाहर जा नहीं सकती, ऐसी मान्यता पक्की हो गई, घूम फिर के वही। और सौदागर का नौकर लकड़ी मार रहा है, चाबुक मार रहा है, लेकिन खच्चर और घोड़े इधर से उधर, उधर से उधर उसी कुंडाले में। ऐसे ही हमारा मन खच्चर और घोड़ों की नाई, दुकान थी घरे, घरे थी दुकान, ने वह पास थी गया तो सासू पास, सासू पास थी वह पास, वह पास थी छोकरा पास, छोकरा पास टीवी, टीवी थी गया तो रेडियो आया, रेडियो आया तो चीकड़ी मान, चीकड़ी छोड़ी तो दातण पकड़ी, दातण छोड़ी फलाणू पकड़ू, फलाणू छोड़ी पछी के आ मारू छे पकड़ू। अरे जिससे सब पकड़ा जाता है उस यार में आराम करने का भी थोड़ा समय निकालो, एक छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, इसलिए कठिन हो रहा है। अष्टावक्र मुनि कहते हैं असमाधिर अविक्षेपान मुमुक्षुर्न चेतराहा निश्चित्य कल्पितम पश्यन् ब्रह्मे वास्ते महाशय। जिसका महाशय है, जिसका महान आशय है। हम कहते हैं क्यों जी महाशय, ये आदर की भाषा है, शिष्टाचार है। वास्तव में महाशय तो वह है जिसका तुच्छ कोई आशय नहीं, जिसका इस फिजिकल शरीर में कोई आशय नहीं, जिसका अंतवाहक शरीर में कोई आशय नहीं, जिसका महाशय हो गया, जिसे विराट आकाश की कोई सीमा नहीं, आशय जिसका कोई सीमित नहीं, जिसकी कोई आशय की आकृति नहीं, ऐसा जिसका आशय है उसको बोलते महाशय। वास्तव में महाशय कबीर हैं, महाशय नानक हैं, महाशय शंकराचार्य हैं, महाशय लीलाशाह बापू हैं, महाशय सुकरात हैं, महाशय समस्त वेद हैं, महाशय बुद्ध पुरुषों को ही महाशय कहा जाता है, जिनका कोई आशय नहीं, तुच्छ आशय नहीं, ऐसा आशय है कि उसमें सब आशय छोटे हो जाते हैं। तो भोले बाबा छंदावली में कहते हैं कर्ता समाधि है नहीं, जिसमें नहीं विक्षेप है, वो बुद्ध पुरुष, वो ज्ञानवान सुख पाने के लिए समाधि नहीं करता, समाधि उसके चित्त का स्वभाव हो जाए कोई बात नहीं, उसको विक्षेप नहीं तो समाधि क्या करे, उसे बंधन नहीं तो मुक्ति की इच्छा क्या करे। वो समझता कि बंधन और मुक्ति स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर का खेल है, इन दोनों खेलों को सत्ता देने वाला मैं सदा से मुक्त हूं, मुझे क्या मुक्ति और क्या बंधन। मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनाहम न च श्रोत्र जीव है न च धारण नेत्र न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम
चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम।
मैं चिदानंद रूप हूं, मैं ये पंच भौतिक शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चित्त नहीं हूं, मैं अहंकार नहीं हूं, मैं चिदाकाश। तो ये भूताकाश में हमारा भौतिक शरीर रहता है, चित्ताकाश में हमारा सूक्ष्म शरीर रहता है। इन दोनों को रहने की और जानने की सत्ता जो दे रहा है वो चिदाकाश आत्मा है, वो आत्मा मैं हूं ऐसा ज्ञानी सतत अनुभव करता है। मैं हूं ऐसा कहने का परिश्रम भी उसको नहीं लगता है। गुरु पूनम के दिन, इतवार के दिन, किसी पर्व के दिन लोग आशाराम के दर्शन करने की खूब कोशिश करते हैं। तीन तीन घंटे गुरु पूनम को, चार चार घंटे लाइन में बेचारे खड़े रहकर फिर आशाराम से मिलने की इच्छा करते हैं, नजदीक आने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे आ पाते हैं और कुछ नहीं भी आ पाते हैं धक्का मुक्की के कारण और समय के कारण। लेकिन आशाराम ने कभी सोचा नहीं कि मैं आशाराम को मिलूं, मैं दर्शन कर लूं जरा। ऐसा भी नहीं सोचा कि आशाराम मेरे साथ है, है बस। ऐसे ही ज्ञानवान ने परमात्मा से मिलने की अथवा सुख से मिलने की कभी कोशिश नहीं की, जान लिया कि इसी का नाम वही है, बास हो गए। अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा, लग गया पूरा निशाना, काम क्या बाकी रहा, 84,000 के चक्कर से थका खोली कमर, अब रहा आराम पाना, काम क्या बाकी रहा, देह के प्रारब्ध से मिलता है सबको सब कुछ, नाहक जग को रिझाना, काम क्या बाकी रहा। उस बुद्ध पुरुष के लिए कोई कर्तव्य नहीं, कोई प्राप्तव्य नहीं, उसकी हर क्रिया, हर अदा, हर हिलचाल स्वाभाविक होती है। उसका कोई तुच्छ आशय नहीं, उसका महाशय पूरा हो गया, अब क्या। उस महाशय ज्ञानवान को हम जिस भाषा में जान सके वह भाषा अष्टावक्र मुनि जनों को कह रहे हैं। और भोले बाबा चंदावली के रूप में अपने शिष्यों के प्रति कह रहे हैं। हकीकत में तो ज्ञानवान को समझने के लिए हमें भी उस ज्ञान की सीढ़ियों पर चढ़ना होगा। और ज्ञान की सीढ़ियां ये भाषा है, सच पूछो तो न चढ़ना है न उतरना है। हम सोचते हैं कि अभी शांति नहीं, अभी सुख नहीं, कल सुख होगा, अभी मुक्ति नहीं, बाद में मुक्ति आएगी। तो आज को हमने चिंता में रख दिया, आज को हमने दुख में बदल दिया। अभी इतना इतना है लेकिन इससे हम संतुष्ट नहीं, और कुछ हो जाए तब हम सुखी। तो हमारी खुशी को हमने कल पर रख दिया। सच पूछो तो ईश्वर जब है तब आज है, और संसार कल पर है। कल पर जो रह सके उसका नाम संसार, और आज जो हो उसका नाम है ईश्वर। अभी जो है उसका नाम ईश्वर है, और जो बाद में आएगा वो संसार होगा। अभी इस समय तुम्हारे हृदय में जो धक रहा है, जिसकी सत्ता, वो ईश्वर है। और कल जो घटना घटेगी वो संसार होगा। जो भी बात कल पर गई मानो संसार पे गई। इसलिए ईश्वर को पाना कल पर न रखो। अभी तो जरा मुंह चढ़ा के बैठने दो, कल नाच लूंगा, कल भी न नाच पाओगे। अभी तो जरा ये ले लेने दो, कल दे दूंगा, कल न दे पाओगे। अभी जो कुछ देना चाहते हो देह अध्यास से दे दो, खुशी देना चाहते हो दे दो, प्रेम देना चाहते हो दे दो, अहंकार देना चाहते हो दे दो, चिंताएं देना चाहते हो दे दो, कल किसने देखी। एक त्यागी पंडित थे, उनके चित्त में खूब त्याग था। बाहर से सत्संग करते थे, लेते थे, देते थे, दिखते थे, लेकिन अपने चित्त में उनको कुछ पाकर सुखी होने की भ्रांति नहीं थी। उसने देह अध्यास का त्याग कर रखा था, इसलिए वो महान त्यागी थे, पंडित थे, गृहस्थी थे, तीन बेटे थे, दो बच्चियां थी। वह चतुर्वेदी पंडित अष्टावक्र की भाषा को समझ गए थे, गुरुओं के उपदेश को, वो आज पर ही निर्भर रहते थे, कल की कल्पना वे नहीं कर पाते थे। कल नहीं आता तो परसों कैसे आएगी, जब आता है तब आज होकर आता है। एक सेठ उस पंडित की कथा में जाते जाते प्रभावित हुए और सेठ जी उनके शिष्य बन गए। और सेठ जी को जब शांति और आनंद का एहसास होने लगा तो सेठ ने कहा कि कृतघ्न नहीं होना चाहिए, जिससे कुछ पानी का प्याला भी मिलता है तो उसको भी धन्यवाद देना पड़ता है, उनको भी कुछ बदले में मौका मिले तो पानी के चार प्याले अर्पण करने चाहिए। तो मुझे इतना सुख मिला, इतनी शांति मिली, मैं पंडित जी का आभारी हूं, कुछ सेवा का मौका ले लूं। पंडित जी को कहा कि गुरु जी आज्ञा करो कोई सेवा। बस बोले सेवा जो मंत्र दीक्षा दिया है उसका जप करो, संसार की आसक्तियां छोड़ो, जो मिटने वाला, जो पहले नहीं था और बाद में नहीं रहेगा, वो धन दौलत अभी भी नहीं है ऐसा समझकर उसका उपयोग करो। पहले तुम आए थे तो नहीं था तुम्हारे पास, इस जन्म के पहले ये चीजें तुम्हारे पास नहीं थी और मरने के बाद नहीं रहेगी तो अभी भी नहीं है ऐसा समझ के संसार में व्यर्थ हो। इसीलिए वो रामायण की साखी फिर दोहराना पड़ता है, ईश कृपा बिना गुरु नहीं, गुरु बिना नहीं ज्ञान, गुरु वर गुरु बिना नहीं ज्ञान, ज्ञान बिना आत्मा नहीं, गावही वेद पुराण। ज्ञानी समाधि रहित होने से मुमुक्षु नहीं है, संसारी तो नहीं है, साधक भी नहीं है, जिज्ञासु भी नहीं है और मोक्ष की उसको इच्छा नहीं, क्योंकि वो मोक्ष स्वरूप स्वयं हो गया। इसलिए ज्ञानी समाधि रहित होने से मुमुक्षु नहीं और द्वैत ब्रह्म के अभाव से वह बद्ध नहीं है। द्वैत माना अनेक, एक परमात्मा में अनेक देखने की भ्रांति उसकी टूट गई, इसलिए उसका बंधन भी नहीं, उसको बंधन भी नहीं, वो बद्ध भी नहीं, परंतु निश्चय करके इस सब जगत को कल्पित समझता हुआ ब्रह्मवत स्थिर रहता है। वो ब्रह्मवेता ब्रह्म रूप होकर संसार में विचरता है, संसार को स्वप्न समझता है, है ही स्वप्न।
तुम्हारे चित्त में खूब प्रसन्नता भरते जाओ, प्रसन्नता के प्रसाद से सारी हानियां अलविदा हो जाएगी, तमाम बीमारियां दूर चली जाएगी, मन और तन के दोष गायब हो जाएंगे। आत्मिक प्रसन्नता में अपने को क्यों नहीं रखते हो, अपने को आत्मा क्यों नहीं मानते हो, अपने को खुश नसीब क्यों नहीं मानते हो, अपने को सौभाग्यशाली क्यों नहीं मानते हो कि ऐसे तपे हुए वातावरण में भी भीतर की शांति पाने का मौका मिल रहा है। परमात्मा हमारे हैं, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा के होकर हम परमात्मा से प्रीति जोड़ें, परमात्मा के होकर हम परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा के होकर हम संसार का व्यवहार करें, देखें व्यवहार गुणों में हो रहा है, मेरा परमात्मा इन गुणों से परे सच्चिदानंद स्वरूप है। और भगवान कहता कि तेरा भी यही स्वरूप है। अब हम भगवान की बात मानेंगे, बुद्धि के मान अपमान के संस्कारों को न मानेंगे। मान अपमान बुद्धि का निर्णय है, बुद्धि जिन वचनों को मान वाला मानती है उससे मान लगता है, जिनको अपमान वाला मानती है उससे अपमान लगता है। अब ये बुद्धि की मान्यता गुणों के कारण होती है, बुद्धि बदलती रहती है, लेकिन न बदलने वाला मेरा परमात्मा, उसको मेरा धन्यवाद है, उसको मेरा प्रणाम है। निर्गुण रोटी सबसे मोटी उसका भोग लगाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है, तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है, पांच पचीस मिलकर आए उनको घोट पिलाता है, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। अंजन माना इंद्रियां, जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं। इंद्रियों की पहुंच गुणों में होती है, इंद्रियों की पहुंच पदार्थों में होती है। जहां इंद्रियों की पहुंच नहीं, वह निरंजन वन अपना आत्मा अपना राम। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। तन की कुंडी, जैसे आप कुंडी से काम लेते हैं, सोटे से काम लेते हैं, ठंडाई घोटते हैं, ऐसे वो आत्मज्ञानी अन आरंभ वाले महापुरुष अपने सुख के लिए कोई आरंभ नहीं करते हैं। उनके तन और मन के द्वारा कर्म होते हुए भी अपने को कर्ता मानकर परेशान नहीं होते। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखते हैं। कबीर जी कहते हैं, निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। तन की कुंडी मन का सोटा हरदम बगल में रखता है। 5-25 मिलकर आए उनको घोट पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। बखड़ माथे गौ भी आई उसका दूध बिलोता है। ध्यान समाधि करते करते ऊपर के केंद्रों में जाता है। सुषुम्ना नाड़ी रूपी गौ बिहाती है, गौ बिहाती तो दूध देती है। ऐसे सुषुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है तो शांत और निर्विषय आनंद प्रकट होता है। बखड़ माथे गौ भी आई उसका दूध बिलोता है। माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है। शुद्ध सुख हम लोग अनुभव नहीं कर सकते, झेल नहीं सकते, हजम नहीं कर सकते हैं। उसलिए शब्दों का, कीर्तन का, अमुक साधनों का अवलंबन लेकर वो सुख के कणियां हम पर बरसाते हैं। माखन माखन साधु खाए छाछ जगत को पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। 5-25 मिलकर आए उसको घोट पिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। कागज की एक पुतली बनाई उसको नाच नचाता है। आप ही नाचे आप ही गावे आप ही ताल मिलाता है। निरंजन वन में साधु अकेला खेलता है। हमें तेरी शांति में, तेरे ज्ञान में, तेरे प्रेम में, तेरे प्रसाद में, तेरे रस में प्रवेश मिल जाए, तेरी शांति में प्रवेश मिल जाए, तेरे प्रेम में प्रवेश मिल जाए। अभागे विषयों ने हमें आकर्षित कर दिया, नश्वर पदार्थों और संसार के व्यवहार ने हमारी कीमती आयुष्य लूट ली है। हे प्राणी मात्र के सुहृद, अब मेरे उर आंगन में तेरे ज्ञान, तेरी भक्ति, तेरे प्रेम से तेरी करुणा से मेरे उर आंगन में ये प्रकाश होता जाए कि जो पहले था बाद में रहेगा और अब भी है, उसके ज्ञान में मैं प्रतिष्ठित होने लगूं, उस शांत अवस्था में मेरी घड़ियां बीते, सुख दुख की संधि के बीच की अवस्था में मेरा चित टिक जाए। तू ऐसी दया करना। ओ जिसमें योगेश्वरों का मन शांत होता है, हम उसी परमात्मा के ध्यान में तल्लीन होते जाएंगे। जिसमें सुखदेव महाराज सराबोर हुए थे, जिसमें नामदेव खो जाते थे, जिसमें मीरा प्रेमा भक्ति के द्वारा डूब जाती थी, जिस चैतन्य में गौरांग तन्मय हो जाते थे, जिस परमात्मा की पराभक्ति में अष्टावक्र मुनि और राजा जनक प्रतिष्ठित हो गए, ऐ मेरे मन तू सी में शांत होता जा।